خدا پیاد من چه پیه و هر سامان Tindo virania to no no ten hanjo rot seli o hio sot se so ka aseren jogi tune o hi deleri beiri tume
جی صاحب یہ عاطف اسلم کی آواز میں گیت ہے اور میں دیکھ لی عاطف اسلم دس از فین میڈ اے آئی کور مائی نیم از رضوان علی اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریوائیو اولڈ سندھی سانگ ہے جس کو انہوں نے دوبارہ گانے کی کوشش کی ہے اور اے آئی کے تھرو اولڈ سندھی سانگ ود دی ہیلپ آف اے آئی ان دی نیو وائب آئی ہوپ یو لائک. اچھا اب یہ عاطف اسلم صاحب نے اب آپ امیجن کیجیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے ایک پرانے سندھی گیت کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ہے آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو کریٹ مور ماسٹر پیس فار یو تھینک یو سو مچ کیپ سپورٹنگ. سانگ ہے تو مانجی مانجی نا مہربان. لیرکس جو ہیں عدیز اور وہ کہتے ہیں اینی ون, اس میں انہوں نے ایک ڈسکلیمر بھی, ڈسکلیمر نہیں انہوں نے ایک احتیاط ڈال دی ہے کہ اگر اس گانے کو کسی اور نے اپنی سائٹ پہ ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی یا اگر انہوں نے اس گانے کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کو کانسیکیوٹ. آپ بتائیے ہوگا عاطف اسلم وغیرہ یہ چار پانچ بھائی ہیں, ان کے ایک بھائی وکیل ہیں جو تمام لیگل میٹرز کو کور کرتے ہیں, ایک بھائی ان کے پروموٹر ہیں, ایک بھائی ان کے اوپر نیچے وہ سوشل میڈیا کو کور کرنے کے لیے. میں نے کہا اس کی بیوی مارتی تو بہت ہوگی, بھائی کو دیکھ ہر سارے آٹوگراف لیتے پھرتے ہیں تیرے بھائی کی اور تو کیمرہ مین کوئی تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا. انہوں نے کہا اینی ون ہو اٹمپٹس ٹو ری اپلوڈ مائی ویڈیو اور آڈیو کانٹینٹ وداؤٹ دا پرمیشن ول فیس کاپی رائٹ اسٹرائک. اور دیٹس آل واٹ اٹ از. عاطف اسلم کا گیت, انہوں نے ایک پرانے گیت کو ریوائیو کیا ہے مگر انہوں نے اس گیت کے ذرا اب رائٹس وہ نہیں لے سکتے نا, مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کانٹینٹ کو واٹ ایور دا کانٹینٹ از اگر اس کو کسی نے ری جنریٹ کرنے کی کوشش کی یا اس کو اگر اس نے اپنی سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تو ول فیس دی کانسیکوینسز. ٹھیک صاحب, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے, میں آپ کو ٹاپ آف دا آور کی طرف لے کے چلتی ہوں, پلیز اسٹے ٹیونڈ.
برامپن شہر ایک انویسٹ اسپیشیز مینجمنٹ اسٹریٹجی تیار کر رہا ہے اور ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. آپ کی رائے مقامی پودوں, جانوروں اور ان قدرتی مقامات کے تحفظ میں مدد دے گا جن سے ہم سب لطف اندوز ہوتے ہیں. 29 اگست تک ہمارا مختصر سروے مکمل کیجیے اور 10 خوش نصیب پائیں گے پریسٹو کارڈ جس کی مالیت ہے $20, TRCA کنزرویشن ایریا فیملی پاس جس کی مالیت ہے $35, آنٹیریو پارکس پاسز جن کی مالیت ہے $50. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے برامپٹن ڈاٹ CA Investments.
Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਡੀ ਨਾਗਰਾ WTUR 770 AM ਤੇ ਰੌਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਕਡੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 8 AM ਟੂ 9 AM ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ 11 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਸੰਡੇ 11 ਤੋਂ 1. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ. 416-303-4444 416-303-4444 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773
अपनी कम्युनिटी का सब तो बड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/govpsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज़ नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
और बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 व्हील, कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव, इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
जी साहब, एक बार फिर से खुश आमदेद कहना चाहते हैं हम आपके साथ। अजमत भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे काबिल एहतराम मेहमान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम इसी सेगमेंट में उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। यकीनन ज़िकात का महीना 11वां महीना है। मैंने थोड़ा सा आपके साथ जिक्र किया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी शादी हज़रत सारा से की थी, फिर हज़रत हाजरा से शादी की, हज़रत सारा से उनके बेटे इसहाक और हज़रत याकूब का मैंने तज़किरा किया, ही वॉज अ ग्रैंड सन। यकीनन कुरान पाक के वाक़ात में इसका जिक्र है, हज़रत इसहाक का जिक्र है, हज़रत याकूब का जिक्र है। तो हज़रत याकूब जो थे वो उनके, हज़रत इसहाक जो थे वो उनके बेटे थे, हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब थे। अजमत भाई, आप टेलीविजन पे इस वक्त देख रहे हैं, देख लीजिए, फिर भी दोबारा मेरे जहन से हजरत याकूब निकल गया, मेरी जुबान से निकल गया। तो हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसा मैंने जिक्र किया कि तीनों मजाहब में, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे आप जूदिज्म की बात करें, या आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात कर लें, इन तीनों मजाहब में हजरत इब्राहिम मीन्स अलॉट। इसीलिए इस वक्त की जो प्रेजिडेंट ट्रंप है, अपने फर्स्ट दौर में भी और भी सेकंड दौर में भी, अब्राहम अकॉर्ड जो है उस पे दे वांट टू ब्रिंग ऑल एट द सेम पेज। और अगर आप भी जाएं तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। यस, नाउ आई कम टू द सेकंड पॉइंट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी हजरत सारा, ओल्ड एज में अल्लाह ताला ने औलाद दी थी, हजरत इसहाक की सूरत में उनको अल्लाह तबारक तआला औलाद देते हैं। हजरत हाजरा उनकी सेकंड वाइफ थी, हजरत हाजरा से उनका जो एक बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं। अब जैसा हमने कहा था कि अगर हम तौरा की जिक्र करें, तौरात का जिक्र करें, ज़ाहिर है बीगम मुसलमान हम तमाम आसमानी किताबों पर یقین رکھتے ہیں، جس میں تورات بھی ہے، جس میں بائبل بھی ہے، اور آخری کتاب دا امینڈڈ ورژن از قرآن پاک ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بکلیٹس یا صحیفے بھی مختلف پیغمبروں کے اوپر آئے جن پہ ہم اکولی بلیو کرتے ہیں. ایوری تھنگ واز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی دا میسنجر آف تھرو دا میسنجرس، پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا تھا. جو یہودی کمیونٹی ہے دے ایگزیکٹلی بلیو ان دی سیکریفائس، قربانی کے پہ وہ بلیو کرتے ہیں. وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور ایک بار خواب دیکھا، دو بار خواب دیکھا، انہوں نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان بھی کی، اونٹوں کی قربانی بھی کی، پھر انہوں نے خواب دیکھ لیا، پھر انہوں نے خواب دیکھا، الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. اب جو اگر ہم جیوش کمیونٹی کی طرف لے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو تورا کے بیچ میں درج ہے پیدائش 21 اور 12 کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اسحاق کو ان کی نسل کا، حضرت ابراہیم کی نسل کا وارث قرار دیا تھا، مگر پھر اسحاق کو قربان کرنے کا بھی حکم دیا. 22:2 کے بیچ میں ہے، آخر میں خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ مارو. اچھا اب اگر ہم یعنی ان کو وراثت بھی دی، ان کو قربانی کا بھی کہا گیا، اور جب قربان کرنے کا کہا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا ایک جانور کی قربانی سے. ایز اے مسلمان ہم یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو بیوی حضرت ہاجرہ سے، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ وہی واقعہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو صفا مروہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا. اندھیری رات تھی، اللہ نے اس شہر کو آباد کرنا تھا، اور پھر حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ جو دوڑی تھی، جس رسم کو ہم پورا کرتے ہیں اب حج کے دنوں میں صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران، اور پھر ظاہر ہے یہ بچہ جب اپنا پاؤں مارتا ہے تو وہاں زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے جو کہ آب زمزم کی صورت میں ہے. مگر کیونکہ اس آبادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسبز و شاداب کرنا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ یہ چشمہ کھودا، اور پھر بعد میں ایک کارواں وہاں پہ آتا ہے اور وہ پھر ان سے وہ پانی لینے کا بات کرتی ہے، تو وہ ان کی حضرت ہاجرہ کی ملکیت میں وہ کنواں چلا جاتا ہے. بہرحال اس حوالے سے، مگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب عظمت بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کو پیغمبری ان کو بھی ملی تھی. تو آئی بلیو کہ میں نے پریویسلی جب اس کا ذکر کیا تھا، آج 22 ذی قعد ہے، 20 مئی، 22 ذی قعد 1446، اور اگلا مہینہ جو کہ 12واں مہینہ ہوگا ذوالحج کا ہوگا، جس میں ہمارا سب سے اسلام کا سب سے امپورٹنٹ پلر وچ از حج، اس کی پرفارمنس ہوگی مکہ معظمہ میں. اور یہ حج بنیادی طور پر حضرت ابراہیم کی اسی سنت کو دہرایا جاتا ہے. آپ کے دل میں خیال آیا تھا، شیطان نے بہکایا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرو، آپ نے ایک دفعہ پتھر مارے، پھر دوسری بار اس کو، پھر تیسری بار، یہ سنت بھی وہاں پہ دہرائی جائے گی، قربانی کی سنت کو بھی دہرایا جائے گا. تو عظمت بھائی سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے میرے ساتھ رہے. میرے ساتھ میرے قابل احترام بھائی جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت تشریف فرمائے. سر السلام علیکم. پھر کسی نے پتا کیا کہنا، اس نے کہنا عارفہ نے جان کے بھائی بند کر دیا تھا، مگر عارفہ از اولڈ ناؤ. اچھا کرامت بھائی،
عارفہ اگر بوڑھی ہے تو ہم
جوان ہیں، آپ جوان ہیں،
ہم تو تمہارے بڑے بھائی ہیں.
نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی سے نوازے، بہت پیارے بھائی ہیں. بعض اوقات انسان کے دل پہ تھوڑی سی، میرے دل کے اوپر تھوڑا بوجھ تھا. میرے لیے، میرے تمام بھائی بہنیں، آپ سب تمام قابل احترام ہیں، اس میں میری کمزوری نہیں ہے، بٹ پرابلی مائی پیرنٹس فار رانگ، وی ور ٹرینڈ دیٹ وے کہ بڑے کی احترام کرتے ہیں، اگر بڑا بات کر رہا ہو تو چپ رہو. اور میں نے کہا پھر میری تو نوکری گڑبڑ ہوگی، ریڈیو کے ٹائم میں تو میں نے 25 منٹ میں اتنی چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو اسمائل اینڈ لاف ایز ویل.
وہ تم نے کہاوت سنی ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟
کوئی کھایا جو نصیب میں. آج دیکھیں کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا یہاں کیلیڈن میں، ایک ٹرک کا جو پک اپ سے اور اس سے ہوا، اور آپ یقین کیجئے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کون कैसे अगर बचा होगा तो डेफिनेटली मल्टी व्हीकल एक्सीडेंट था। करामत भाई, अभी जाहिर है ये ज़िकात का महीना जो कि इस्लामी तारीख के बीच में 11वां महीना है, अगला महीना रमजान का सॉरी हज का महीना, मैं सोच रही थी कि आप आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार किसी को फील्ड मार्शल का ओहदे पे तरक्की दी गई है। थोड़ा सा बात कर लीजिएगा कि ज्यूइज्म में भी, यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी मजहब, इन तमाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या वैल्यू है, और हम कहते हैं हजरत इस्माइल की कुर्बानी हुई थी, वो कहते हैं हजरत इसहाक की कुर्बानी हुई थी, अगर हम इतना करीब हैं अल्लाह के पैगाम पे तो फिर ये मारा मारी क्यों?
मारा मारी यूं है बीबी के दिलों में गुंजाइश नहीं है,
सही
फराक दिली नहीं है, रवादारी नहीं है। देखो दोनों हजरत इब्राहिम के दोनों बेटे उनके बेटे थे, उनके वारिस थे, और इसीलिए हजरत इब्राहिम को इमामुल अंबिया कहा जाता है, अंबिया के इमाम। और हमारा तो ईमान हमारी किताब पर है, अल्लाह की आखिरी किताब जो हमारे सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर नाजिल हुई, तो हम तो उसको दुरुस्त समझते हैं। यहूदियों का मसला ये है कि वो तो हमारे कुरान को ना गर्दानते हैं, ना हमें ना हमारे रसूल को अल्लाह का रसूल समझते हैं। तो मेरी इस मसले पर बहुत से यहूदियों से भी बातचीत हुई, ईसाइयों से भी गुफ्तगू हुई, और मैं इस नुक्ते पर लाकर उनको लाजवाब कर देता हूं कि देखो हम तो तुम्हारे पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, हम हजरत मूसा को भी पैगंबर मानते हैं, हजरत ईसा को भी पैगंबर मानते हैं, इसलिए कि हमारी किताब का ये कहना है, हमारे पैदा करने वाले का ये कहना है कि मुसलमान वही है जो तमाम पैगंबरों की पैगंबरी पर, रिसालत पर यकीन रखे, ईमान रखे। तो हम तो तमाम पैगंबर को, तमाम अंबिया को मुतबर्रिक मुकद्दस समझते हैं, और ये यहूदियों की तंग नजरी है। देखो दुनिया में वो उन्होंने जो अपने दिफा में नारा बनाया हुआ है वो ये एंटी सेमिटिज्म, एंटी सेमाइट, जबकि अरब भी सेमाइट हैं उतने ही जितने यहूदी हैं, लेकिन वो अरबों को ये दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये है कि उनकी तंग नजरी है, उनके दिलों में गुंजाइश नहीं है, जबकि मुसलमान तो उनको, उनकी किताब को भी मुकद्दस समझते हैं और उनके नबी को भी मुकद्दस समझते हैं, मुतबर्रिक समझते हैं।
बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया। मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आता है, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़म की अगर हम बात करते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सलीब पे लेके आया गया था तो कहा जाता है कि उस वक्त के जो इंतहाई बाअसर उस बादशाह के दौर में लोग थे वो यहूदी थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वो अल्लाह तबारक व तआला की कि सूद मत लो, यही थी ना, यही तालीमात थी ना, तो जिस पे बादशाह को उकसाया गया था कि, और मगर एट द एंड ऑफ द डे यानी हजरत ईसा ज्यूइश की और क्रिश्चियंस की बड़ा झगड़ा रहा, एक अरसे तक झगड़ा रहा,
सदियों तक।
अच्छा
सदियों,
यानी वो ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ा दिया गया, तो वो इकट्ठे कैसे हो गए यहूदी और क्रिश्चियंस?
वो तो अब जाके वो
व्हाट मेड देम बी टुगेदर,
उनको इकट्ठा करने वाला साम्राज्य निजाम है, कॉलोनियलिज्म। देखो यहूदियों पर सदियों यूरोप में जुल्म हुआ, यूरोप के हर मुल्क में जुल्म हुआ, यहां तक था कि यूरोप के शहरों में यहूदी आबादियां अलग थलग हुआ करती थी, उनको गेटोस कहते थे। यहूदी उन गेटोस के बाहर शहर में नहीं रह सकते थे और उनके लिए लाजमी था कि जब वो अपने गेटोस से निकलें तो अपने लिबास पर स्टार ऑफ डेविड लगाएं ताकि वो पहचाने जा सके। तो ये तो यूरोप ने जो मुसलमानों के खिलाफ जो उनके दिलों में नफरत है ईसाइयों के दिलों में, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सलीबी जंगों के आगाज तक।
अच्छा,
ये जो नफरतें हैं ये कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू हुई 11वीं सदी के आखिर से, जब तुर्क उस्मानी तुर्क उस वक्त के कुस्तुनतुनिया और आज के इस्तांबुल पर हमले कर रहे थे। देखो, तुम्हें तारीख मालूम है कि रोमन एम्पायर थी, उसके बाद जब तीन हजरत ईसा
के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मामला शुरू हो गए हुए थे।
नहीं, मैं तो तारीख बता रहा हूँ तुम्हें कि रोमन एम्पायर थी जिसके शहनशाह कॉन्स्टेंटीन ने हजरत ईसा के 300 साल के बाद ईसाइयत कबूल की। वरना रोमन एम्पायर में तो ईसाइयों पर जो मजालिम हुए वो तारीख में दर्ज है। कॉन्स्टेंटीन ने ईसाइयत कबूल की, उसके बाद रोमन एम्पायर का मजहब ईसाई हो गया और कॉन्स्टेंटीन ने अपना दारुल हुकूमत रोम से मुंतकिल कर लिया आज के इस्तांबुल पर,
जिसको
कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम दिया गया। उसके बाद उस्मानी तुर्क पूरा अनातोलिया फतह कर चुके थे वो, और फिर सिर्फ कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करना बाकी था। उस वक्त के कुस्तुनतुनिया के शहनशाह ने, जो बाइजेंटाइन एम्पायर कहलाती थी, बाइजेंटाइन एम्पायर, उसने उस वक्त के पोप को खत लिखा, और खत ये लिखा, ये बात है 1095 की, 1095 की। उसने ये लिखा कि ये जो जिंदीक हैं, मुसलमानों को जिंदीक कहा जाता था, ये जिंदीक हैं, ये हमारी सल्तनत को मिटाना चाहते हैं, ये ईसाइयत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लिहाजा मुझको बचाया जाए, मेरी सल्तनत को बचाया जाए। पोप ने, उस जमाने के पोप का नाम था अर्बन टू, उन्होंने एक इजलास बुलाया, वो फ्रांसीसी नजात थे, उन्होंने फ्रांस के एक शहर में यूरोप के तमाम शहजादों को जमा किया और कहा कि देखो, हमारा मजहब खतरे में है, हमारे जो मजहबी मरकज है, जो ईसाइयत का मरकज है, वो खतरे में है, लिहाजा तुम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, और मुझे यसू मसीह ने ख्वाब में ये बशारत दी है कि जो कोई इन जिंदीकों के खिलाफ जिहाद करेगा, जंग करेगा, वो खड़ा जन्नत में जाएगा।
अच्छा, वो भी उन्होंने वही जिहाद का भी जिक्र किया और जन्नत का भी जिक्र कर दिया।
वहां से शुरुआत हुई कि यूरोप के तमाम शहजादे जमा हुए, उन्होंने एक फौज मुरतब की और उस फौज ने 1095 में फलस्तीन पर हमला किया और 1099 में, 4 साल के बाद, उन्होंने यरूशलम पे कब्जा कर लिया। और ये यूरोप के मौर्रखीन ये कहते हैं कि जब सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया है तो इतना खून बहाया था शहरियों का कि घोड़ों के सुम खून में तरबतर हो गए थे। उसके 88 बरस बाद 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने यरूशलम को आजाद करवाया, यरूशलम को फिर फतह किया, और यही वही यूरोपी मौर्रखीन जिन्होंने सलीबियों के कत्लो गारतगरी का जिक्र किया था, वो उनका ये कहना है कि सलाउद्दीन ने जब कब्जा किया, यरूशलम को फतह किया, तो एक शहरी मारा नहीं गया था, एक शहरी मारा नहीं गया।
بہت یہ تاریخ ہے, بہت شکریہ. میں بلکہ ایک دن جناب کرامت اللہ علیہ سے ضرور اس بات کو بھی سنیے گا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا, مگر جتنے حجاج تھے ان کے راستوں کو سیکیور کیا تھا. اور ان کی تدفین کے بعد ایک جو بادشاہ تھا اور وہ اس نے اکنالج کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے مارکوں کو اور اس کی شخصیت کو, اور پھر ان کو ان کا جو ٹام تھا وہ گولڈ کا بنوایا تھا, جو بھی بنایا تھا. الکور اٹ لیٹر آن. سر آپ نے
وہ حج تو ہمارے علامہ اقبال نے بھی نہیں کیا تھا.
صحیح. میں سر آج آپ سے لے کے آنا چاہتی ہوں آپ کو, میں بتایا نا کہ ڈر کی پالیسی ہر جگہ پیدا کی گئی, ملکوں میں بھی قوموں میں بھی, اور اگر آپ بائزنٹینز کی بات کرتے ہیں تب بھی جو پوپ آتے ہیں انہوں نے بھی ایک ڈر کی پالیسی کریٹ کی تھی. آج بھی ڈر کی پالیسی کریٹ کر کے قوموں کو لڑایا بھی جاتا ہے. آج سر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار کسی بھی آرمی چیف کو, ایک جو پہلے جناب ایوب خان تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا خود سے عہدہ دیا تھا, ویئر ایز جو جنرل آصف منیر صاحب ہیں ان کو آپ کے پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا. مگر یہاں جو ایک چیز مجھے, اور میں اس کے بعد آپ سے ہی سننا چاہتی ہوں, مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل وہ بات بتائیں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگی, کہ جب آصف منیر صاحب کو عہدہ دیا, مجھے تھوڑی سی ریزرویشن یہاں پہ آئی ہے, تو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے میں ہمارے جو ایک ایئر فورس کے ہیں چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, ان کو جو ان کی ملازمت کی مدت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے, تو یعنی جو وہ اپنی خدمات کا جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رکھیں گے. تو ڈو یو تھنک اٹس اے ایکسٹینشن پروسیس, بیکاز جب ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے تو ناؤ ہی کین ویئر دس یونیفارم آل ہز لائف.
بی بی دیکھو وہ تم کہہ رہی تھی جو درست تھا کہ ایوب خان نے تو خود کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی تھی. آصف منیر نے بھی خود ہی یہ کام کیا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ جو کٹ پتلی حکومت بنائی ہوئی ہے اس کو حکم دیا گیا کہ مجھے فیلڈ مارشل بنا دو, تو انہوں نے آقا کے حکم کی تعمیل بجا لائے وہ, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے آصف منیر کو. میں یہ کہوں گا ابھی بھی کہ آصف منیر بخت کا سکندر ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے دو بار ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخلے کے لیے امتحان دیا تھا, دونوں بار ناکام ہوا تھا. اس کے بعد اس زمانے میں ایک وہ منگلا میں ایک آفیسرز ٹریننگ اسکول ہوا کرتا تھا, او ٹی ایس کے نام سے. وہاں سے اس نے تربیت حاصل کی اور اس کے بعد کمیشن مل گیا اس کو اور یہ فوج میں افسر ہو گیا. 27 نومبر 2023 کو یہ ریٹائر ہو چکا تھا, لیکن اس میں دو دن کی توسیع کی گئی تاکہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جا سکے. تو ترقی کی جو سیڑھیاں آصف منیر نے چڑھی ہیں وہ تو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک تو فیلڈ مارشل ہمیشہ کسی بڑی جنگ کے بعد کسی کو اس عہدے پر ترقی دی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ, اور یہ تاریخی حقیقت ہے, کہ دوسری جنگ عظیم میں جنرل آئزن ہاور جو بعد میں امریکہ کے صدر بھی ہوئے, وہ یورپ میں اتحادیوں کے کمانڈر ان چیف تھے, لیکن وہ بھی فیلڈ مارشل کے منصب پر ترقی نہیں پا سکے. فیلڈ مارشل کے منصب پر ترقی پانے والے صرف ایک جنرل تھے اور دوسری جنگ عظیم میں وہ امریکہ کے جنرل ڈگلس میکارتھر تھے.
جی جی.
برطانیہ کی فوج میں اسی طرح جنرل منٹگومری फील्ड मार्शल बने, फील्ड मार्शल मन गुमरी। और जो हिंदुस्तान में बरतानवी फौज के आखिरी सिपह सालार थे, फील्ड मार्शल ऑकिनलैक, वो बने। लेकिन यहां तो पाकिस्तान के में पाकिस्तान की तो तारीख ही अजीब और गरीब है। यहां तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने आप को खुद तरक्की दे लेता है। लेकिन अब यहां एक मसला पैदा हो सकता है। मसला यह है कि अय्यूब खान के जमाने में तो चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कोई मनसब नहीं था। अब देयर इज ए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और वो प्रोटोकॉल के एतबार से वो आर्मी चीफ के, बल्कि तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान से सीनियर होता है। तो अब मसला ये पैदा हो जाएगा कि अगर आसिम मुनीर जो सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो फील्ड मार्शल हो गए हैं, तो फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को भी तरक्की देनी पड़ेगी। इसलिए कि एक एक जनरल फील्ड मार्शल का बॉस तो नहीं हो सकता।
या मगर उनका उनको तो नहीं दी गई, ये जनरल सिद्धू को दी गई है।
जनरल वो तो एयर चीफ मार्शल,
एयर चीफ मार्शल उनको दी गई है।
वो तो फोर स्टार जनरल के बराबर रैंक होता है ना, तो वो तो फील्ड मार्शल नहीं हुए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत इन्होंने सर्विस के दौरानिए में तौसी के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है। वो तो 26वीं आईनी तरमीम में ये भी शिक शामिल की गई है कि सर्विसेज चीफ्स को 3 साल का ओहदा होता है ना, लेकिन 3 साल के बाद उन्हें मजीद 3 साल के लिए तौसी दी जा सकती है। तो उसी वक्त ये मैंने ये कहा था कि आसिम मुनीर ने उनको रिटायर तो होना था 2026 में, लेकिन अब ये तरमीम करके उन्होंने अपने ओहदाए मुलाजमत को 2029 तक तौसी दे दी है।
तो आप इसको कह सकते हैं रिजरेक्शन ऑफ जियाउल हक?
नहीं नहीं, ये काम तो जियाउल हक ने भी किया था, नहीं किया था बीवी ये
नहीं,
तो
नहीं, जाग गए ना उठ। देखिए 10 साल हुकूमत तो की थी ना।
हाँ तो ये तो अब ये तो ताहयात हुकूमत करेंगे।
नहीं नहीं, ताहयात नहीं करेंगे, 10 साल ही करेंगे, उसके बाद फिर जहाज में बम फट जाएगा।
हाँ ये हो सकता। मैं तो ये आज सोच रहा था आरफा बीबी के पाकिस्तान को का नाम बदल देना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बदल, नहीं कोई ऐसी बात ना करे। पाकिस्तान का नाम हम क्यों बदले? पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा। आज मेरी ना जस्टिस मार्कंडे से बात हो रही थी, बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी।
वो बहुत बहुत खरी बात करते हैं,
बड़ी खरी बात लगी। उन्होंने कहा कि फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन डिड नॉट टेक प्लेस इन वन डे, इट टुक इयर्स। 1789 में फ्रांस का फिर रेवोल्यूशन होता है।
हर इंकलाब, हर इंकलाब टाइम टेकिंग, खमीर तैयार होता
है, तैयार होता है। आप चाइना की तरफ आ जाए तो सोच में बदलाव आने में टाइम लगेगा। जाहिर है पाकिस्तान में हर पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, पीपल्स पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, मुस्लिम लीग को पसंद करने वाले लोग हैं, आर्मी से बहुत मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं। मगर जाहिर है मैं कभी कभी आम तौर पे देखा करती थी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी, जागीरदार वडेरा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने जो ये जो भट्टे वाले होते हैं, ये लोगों को उम्रों तक नस्लों तक खरीद लेते हैं, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों का फायदा लेते हैं। फिर कोई एक एक्टिविस्ट पैदा होता है और चीजों को तब्दील करता है। तो इंशाल्लाह ये बदलाव इज देयर।
वो मैं उसको मिसाल ये देता हूं कि देग तैयार होने में वक्त लगता है ना।
सही,
चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है देग को और उसके बाद वो पकती रहती है।
दाल पकानी तो बड़ी आसान है, अगर आपने पाए बनाने हैं तो फिर ज्यादा देर पकाना।
पाए बनाने के लिए तो फिर पाए पकाने के लिए तो वक्त दरकार होता है।
उबलता पानी इसमें डालना। बहुत शुक्रिया।
तो इनकलाब भी पाए पकाने की तरह से है।
तो आपको क्या लगता है कि आर्मी के तीन इस दफा इन्होंने जाहिर है अगर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उनको फील्ड मार्शल का जो लकब दिया जिसमें उनकी कोई मरात नहीं बढ़ेगी तो और तरक्की और कुछ नहीं होगा सिर्फ ये कही कैन पुट ऑन दी यूनिफॉर्म थ्रू आउट हिज लाइफ नंबर वन।
मार्शल रिटायर नहीं होता कभी
कभी
रिटायर नहीं होता
तो बस
फॉर
यूनिफॉर्म वो ताहियात पहन सकते हैं रिटायर तो मेरा ख्याल हो सकेंगे मगर यूनिफॉर्म वो थ्रू आउट द लाइफ पहनेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक के क्या नेवी में या बाकी जो अफवाज हैं उनमें थोड़ी अफरा तफरी नहीं होगी?
नहीं वो अफरा तफरी होगी होनी चाहिए। देखो ना ये फितरी तकाजा है, फितरत का तकाजा ये है कि वो जो मैं अक्सर ये अपनी फॉरेन सर्विस में ये मिसाल दिया करता था कि और मैं अपने साथियों से कहता था जो रिटायर हो चुके थे मेरी तरह से कि देखो अगर हम रिटायर होने के बाद कोई हुकूमत हमें पेशकश करे कि हम तुम्हें फिर सफीर बना देते हैं तो वो सिफारत कबूल नहीं करनी चाहिए इसलिए कि वो हक तलफी होगी उन जूनियर्स की जो इंतजार में हैं जो कतार में लगे हुए हैं कि कब उनको सफीर बनाया जाता है। इसी तरह फौज के रैंक्स में भी जो जाहिर है कि फौज की तो बाकायदा रैंकिंग है ना उसमें भी नौजवान अफसरों के दिलों में ये ख्याल पैदा हो सकता है कि ये जो
हकतलफी हो रही है
जो हम सरों पर मुसल्लत हो गए हैं और ये जान नहीं छोड़ रहे तो हमारी तरक्की की राह मसदूद हो रही है, हमारी तरक्की के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। उनमें जो बेचैनी पैदा होगी और मैं अक्सर ये सोचता हूं आरफा बीबी कि उस दिन से डरना चाहिए जब फौज के जूनियर अफसरान अपने सीनियर्स के खिलाफ बगावत कर देंगे इसलिए कि हमारी हालिया तारीख में आलमी तारीख में इसकी मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मुअम्मर कद्दाफी ने जब ये लीबिया में इनकलाब लाए हैं तो उनकी उम्र सिर्फ 27 बरस थी और वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार जगहों पर यह हुआ है और तरक्की पजीर मुल्कों में तो यही हुआ है कि जूनियर अफसरान ने अपने सीनियर्स के खिलाफ बगावत की है और उसके नतीजे में खूनरेजी हुई है। तो हमें पाकिस्तान के जाहिर है पाकिस्तान हमें अजीज है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इस बात से डरना चाहिए, उस दिन से डरना चाहिए जब पाकिस्तान की फौज के जूनियर अफसरान अपने सीनियर्स के खिलाफ इन्हीं बातों की वजह से बद्दल होकर अदम इत्मीनान का मुजाहरा करते हुए अपने सीनियर्स के खिलाफ बगावत कर देंगे और जो कत्ल खूनरेजी होगी इसलिए कि हमारे यहां मुसीबत यह है, सितम बालाए सितम यह है कि हम अब भी इस जहनियत के साथ सोचते हैं कि हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं, हम पठान हैं, हम बलोची हैं।
बहुत शुक्रिया। कसूर तो फिर अवाम का ही हुआ ना, कुछ अवाम का हुआ, कुछ डिवाइड एंड रूल करने वाले पॉलिटिशियंस का
कसूर
हुआ।
कसूर अवाम का नहीं है, अवाम आखिर कब तक पिसते रहेंगे?
चले सर आज इस पे भी बात हो जाए। मैं आपकी बात को देखिए, कुरान को तो नहीं आप झुटा सकते, कुरान ने कहा है जैसी कौम है वैसे लीडर, इज इट राइट और रॉन्ग?
ठीक है ठीक है,
आप इसको गलत कह दें?
नहीं नहीं नहीं, जो
कुरान ने जो लफ्ज कहा जैसी कौम है वैसे लीडर, देखिए कसूरवार हम आप पे जिसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं सर से उनका कथा आपकी खिदमत पेश करती हूँ। इंडिया में तीन लोगों को ये दिया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया गया था 71 की वार्ड में बेहतरीन कारकर्दगी पे जो उस वक्त के 4-स्टार जनरल थे उनको उनकी रिटायरमेंट के बाद दिया गया था। 65 के एक जनरल थे उनको उनकी रिटायरमेंट गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया था, मैं गलती ना करूं।
मानिक शॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था, उससे पहले करियापा को, करियापा जो अयूब खां के बैचमेट थे रिटायरमेंट के बाद
1973 में फील्ड मार्शल का होदा सेम मानिकशा को दिया गया था। 71 की वॉर वो रिटायर हो चुके थे। रिटायर इंडियन फौज में जनरल एम के करियापा जो हैं मुल्क की बड़ी फौज के दूसरे कमांडर इन चीफ थे। रिटायरमेंट के कई साल के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। इसके अलावा 1965 की पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में भी यकीनन उस वक्त के इंडियन फजाई के चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जुन सिंह को भी बाद में मार्शल का ओहदा दिया गया था। ये भी फाइव स्टार रैंक के थे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान का भी अगर जिक्र करें तो गवर्नमेंट की तरफ से दो लोगों को ये ओहदा मिल चुका है। इनमें से एक अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और फौजी अफसर अब्दुल रशीद दोस्तम है, जबकि दूसरी शख्सियत जो है नायब सदर और वजीर दिफा मोहम्मद कासिम फहीम है। तो बस सब दुनिया ऐसी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चलते रहो।
तुमने सुना है अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे।
सर पोजीशन अगर आपको भी प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी ना तो आप भी सब कुछ करेंगे। आई लिखवा नहीं है मेरे से।
कभी कभी
इस
तरीके से वजीर आजम बनना।
सर अगर आपको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाए तो व्हाई नॉट, आप कहेंगे लो भाई तुम आगे की कर।
अगर प्राइम मिनिस्टरशिप उस तरह से मिले जिस तरह इमरान खान को मिली थी, उसने अपनी अपनी सियासी जमात बनाई थी तहरीक इंसाफ,
मेरा
एक अरसे तक उसने जदोजहद की थी, मेहनत की थी, उसके बाद इंतखाबात के जरिए से वो मुंतखब होकर वजीर आजम बना था। अगर इस तरह से वजीर आजम कोई बनता है तो हम और आप कोई एतराज करने वाले नहीं होते।
बहुत शुक्रिया, मगर सर आपसे मेरा इख्तलाफ हो।
शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम हो और इस तरह का कठपुतली वजीर आजम जिसको कौम ने मुंतखब नहीं किया, अगर वो किसी जनरल को फील्ड मार्शल बना दे तो फिर तो सवालिया निशानात खड़े हो।
बहुत शुक्रिया मेरे सामने तो एक सेकंड सर मुझे भी कहने दीजिएगा, मेरी एहतराम अपनी जगह, इख्तलाफ हो सकता है। कहानी तो बहुत पीछे शुरू हुई थी, पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लीजिएगा। इन्हीं पॉलिटिशियंस ने, यकीनन बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे मगर ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखिएगा। सर से मेरा इख्तलाफ हो सकता है मगर पीटीआई को भी के सर के ऊपर कभी उकाब ना, ईमानदारी से अगर आप गौर करें तो कभी ये उकाब हुमा ना बैठता अगर उनकी फेवर ना होती। नंबर वन। नंबर टू, इमरान खान ताजपोशी ना हो सकती। नंबर टू, खान साहब ने भी गदर ही किया था इन्हीं को खुश करने के लिए। एक लफ्ज याद कीजिएगा, बार बार निकलेगा आपके पास कि वी आर एट द सेम पेज। हाउ कम अ प्राइम मिनिस्टर, और जब आप पेज से हटे तो फिर उन्होंने तो आपको एक्नॉलेज ही ना की, आपने उनको एक्सटेंशन भी दी थी। तो एवरीबडी इस जुल्म की दास्तान में सारे पॉलिटिशियंस का नाम है। एनीवेज आज का कथा हो जाए।
हाँ आज का कथा तो आसिम मुनीर पर ही।
एक कॉलर भी आ गए, पता नहीं ये क्या कह रहे, सुन ले एक कॉलर को भी ले ले।
हाँ, हाँ,
जी अस्सलाम वालेकुम। जी
जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
जी जी वाले साहब,
ये मैं आज करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बंदा नौकर होता है ना तो मालिक हुक्म मानता है। जमींदार नौकर उसको रखते हैं जो उनका ताबेदार हो, क्यों उन्हें उसको पैसे देने हैं, तनख्वाह देनी है, उनका खर्चा उठाना है। तो वजीर आजम की इसमें कोई बहादुरी नहीं, मालिक ने हुक्म दिया मुझे रैंक दे दो, उसने दे दिया, उसके जी सर ठीक है
जी।
रहेगा बाकी एयर चीफ और एयर नेवी, उन्होंने किसी की बेटियों के इज्जतें नहीं उठाई, किसी की अनमेरिड बच्चियां नहीं उठाई, किसी की बच्चियों का जहेज नहीं लूटा, इस वक्त उनको नहीं बनाया जाएगा। जी मेरी गुजारिश है सर।
थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल साहब, आज आप बिल्कुल चले गए, आपका पैगाम मनो अन जाएगा। ये तिवाना साहब थे, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की। और आज का कथा हो जाए तो ज्यादा बेहतर।
टिवाना साहब ने क्या बात,
टिवाना साहब ने तारीफ ही की है। उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में वडेरा शाही के लिए ये सब कुछ लाजमी है।
यही तो
मगर हमारी बेटियों को हिफाजत मिलना
सबसे
चाहिए,
सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ,
हमारी बेटियों को हिफाजत मिलना चाहिए। अच्छा जी, आज का कथा हो
तो आज का कथा ये है कि फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर।
फील्ड
मार्शल बन गया आसिम मुनीर, इंतहा है ये हवस की इंतहा, इंतहा है ये हवस की इंतहा, ताजपोशी की कसर बस रह गई, ताजपोशी की कसर बस रह गई, अब इसे तस्लीम कर लो शाहनशाह।
कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर लेंगे हम।
ताजपोशी अब होनी चाहिए, हाँ, ताजपोशी की कसर बस रह गई, अब इसे तस्लीम कर लो शाहनशाह।
कर लीजिए, तस्लीम कर लीजिएगा शहनशाह। सुन रहे हैं प्रोग्राम साथ जनाब करामतुल्लाह वारी साहब, एवरी ट्यूजडे को यहाँ पे आते हैं। मेरे लिए वाकई गलत नहीं कहती, काबिल एहतराम है, आप तमाम लोग भी। और इट्स नॉट कि मैं वीक, मैं मोहब्बत फाते आलम पे चलना चाहती हूँ। इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। लेट्स टेक सम स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक।
यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत
पाते हैं। अकाल ट्रक एंड लूम, ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी, नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100.
Chandni Banquet Hall.
Intelligent choice, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
Bartala Supermarket. Bartala Supermarket. Halal meat. सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलते, इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलते, मल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलते, बटाला सुपर मार्केट।
स्कॉर्पियो मिसाली सुपर मार्केट, बटाला सुपर मार्केट, 200 मार्कम रोड, स्कारबोरो, मार्कम रोड से इंग्लैंडन का संगम। फोन 416-264-3111।
जी साहब, एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आपको प्रोग्राम को। समथिंग हैपेंड, तो एकदम से कॉलर्स मेरे साथ आए हैं, हर कोई अपनी राय देना चाहता है। ऑफकोर्स यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि इसके फौरन बाद हमारे साथ जनाब प्रदीप सिंह साहब सनलाइट से आएंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम भाई प्यारे, 416-4126।
वालेकुम अस्सलाम
जी,
बहुत शुक्रिया आपका।
आप अपना नाम बताइए। और
मेरा नाम तारिक है
जी,
और आपका प्रोग्राम मैं बड़ा रेगुलर सुनता हूँ। आप हमारे वतन की, हमारे दिल की आवाज है
जी,
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका।
कोई गलती हुई तो,
लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है,
मैं इंसान हूँ,
हल्का फुल्का नहीं, आपसे नहीं। ये जो अभी आपने जो कत्ता साहब ने फरमाया है
जी जी,
ये पता नहीं कॉन्टेस्ट में लिखा है इन्होंने
यार, तो मैं फंसी। अच्छा नवदीप, आप यहाँ आ जाओ। आपने कहा कि ये जो कथा उन्होंने इरशाद किया, उसका क्या कहा आपने?
मतलब वो कोई इतना अच्छा नहीं लिखा, हमने उस मुल्क में पहचान दी है और हमारी हिफाजत के लिए वो लोग हैं,
कोई शक नहीं।
और ये थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ था मेरा ख्याल है आर्मी,
मगर मैं आपको इतना तो, मैंने तो सर जो प्रोग्राम किया, मैंने तो मतलब आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट नेगेटिविटी, जबकि एक जगह पे जो मुल्कों के नाम आए हैं उन मुल्कों के नाम वही होने चाहिए।
बिल्कुल आपका तो बिल्कुल, आप हमारी आवाज है और हम यहाँ बैठ के ऐसी आवाज सुनते हैं और ये ब्लेसिंग है।
तारिक भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी।
लेकिन ये कितना पसंद नहीं आया इनका,
आपका आपका पैगाम एयर पे चला गया।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। अगली कॉल, जावेद अहमद साहब आप मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। अरफा साहब आप ठीक हैं? माशाल्लाह,
अल्लाह
मैं आपका प्रोग्राम सुनने वालों में से एक अहम आदमी हूँ।
मैं सदके जाऊँ, थैंक यू वेरी मच जनाब। क्या
मेरा ये पैगाम है कि आसम मनीर साहब बहुत अच्छे सिपाहदार हैं, मगर अब जो कुछ हुआ है कि मावतियां रिदा मिठा पैना मिठा, ऐ मेरा ऐलान है, गल मुक दे झगड़ा चुका। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मावतियां कटियां हो गईयां, मगर अब देखो ना उत्ते ए भी सोचण दी गल है ना कि सारे पॉलिटिशियन रले हुए ने, वो बेचारे इमरान खान साहब पीछे रह गए, वो कहते जी हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे बात करेंगे, बात करनी भी अनफॉर्चुनेटली ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर लाइक दिस, ऑल लाइंस आर बिजी। जी अस्सलाम वालेकुम। बेवकूफ पहले आजम चौधरी साहब को लेके आते, वो उसी क्यू में लो ना जिस क्यू में वो लोग आए हैं। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाजी, आप बहुत मोहब्बत वतन है और हमारी पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन इन सब से मैं इतफाक नहीं करता। ये पता नहीं, ये तो टोटली रिप्रेजेंट पीटीआई को करते होते हैं कि मैंने इमरान खान के जलसे वहां करवाए तो अल्लाह खैर, कभी कहते हैं उसको पहचान ही नहीं बंदे की। बाकी आसम मनीर अगर हमें बुरा लगता है, जिसके सीने में कराने पाक है, जैसी किताब है अल्लाह की सबसे बड़ी किताब उतारी मुकदस किताब है, अगर वो पढ़कर वो तशरीह करके हम भी हमें समझ ना आए तो हम उससे मुंह मोड़े या ना समझ पाए तो हमारी बदकिस्मती है। बाकी जो पिछले दिनों में हमारे मुल्क के साथ होने लगा था, वो भी अगर हमारी फौज हमारा ये सिपा सलार या हमारी जो भी वहां पर हुकूमत है वो ना कुछ करती तो फिर आप ज्यादा समझदार हैं हमसे, क्या होना था कहने।
बहुत कमाल की सर्विस थी,
पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। हम कौन होते हैं भाई अपने मुल्क को बुरा भला करने वाले या समीर को बुरा करने वाले। अल्लाह ताला जिसको इज्जत चाहे इज्जत दे दे और उसे इज्जत दे दे, एहतराम दे दे, ये उसकी देन है। ये लल्लू पल्लू लोगों के कहने कुने से कुछ नहीं होगा।
सर आपका बहुत शुक्रिया, चल जब आपका पैगाम मनोअन एयर पे गया।
थैंक यू
थैंक यू। मैं देखिए आज एक और नई चीज सीख ली है। 4314 अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम
जनाब, आप एयर पे हैं।
जी बस मुझे अभी जी साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल, मतलब मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, उन्होंने मुझे जो कहना था वो कह दिया। अब अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी हो ना जी, तो अल्लाह ताला वो कहीं से भी निकाल के ले आता है। और अभी ये जो साहब है, क्या है, गौरी है या गोरी है, जो भी है, ये हमें आखिरी सारी उम्र इन्होंने सरकार का खाया है, पाकिस्तानी सरकार का, पाकिस्तानी अवाम का खाया है। अब यहाँ बैठ के पेंशन भी खा रहे होंगे और यहाँ के वो भी फायदे भी ले रहे हैं, वहां से भाग के भी आ गए। दूसरों को ये कहना पाकिस्तानी जर्नल या जो लोग हैं नौकरियों के बाद अपने मतलब बाहर चले जाते हैं, खुद ये भी तो बाहर आए हुए हैं, खुद ये भी तो एक दफा तो पाकिस्तान के लिए हजम कर ले उसकी जीत, जहां वो पूरा मातम पड़ा हुआ है बराबर में, वहां यहां पर सिर्फ एक ही शख्स है या एक ही तरह के कुछ लोग हैं जो उस मातम में शरीक हैं। और माशाल्लाह आपने उनको बड़ा अच्छा वो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म कि वो अपना रोना आके यहाँ रोते रहते हैं। इस जीत पे चाहे अगर जीत नहीं भी थी, बराबरी थी, उस पे अगर खुश नहीं होना तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मतलब ये उनके खून में शामिल है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4314 आपका पैगाम मनोअन एयर पे गया। मैं बिल्कुल कहती हूँ 1948 की वॉर के बाद दिस वॉज इंडिया जो यूनाइटेड नेशंस के पास किया था, अभी की बात भी इंडिया यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंचा है। पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा इल्म यह है कि हम लॉबिंग नहीं करते, पाकिस्तान हम अंदर से ही करते हैं। और इसमें मैंने हमेशा ये कहा कि दीज आर आर पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन भी बेचारे क्या करें, जैसे मैं और आप हैं वैसे ही पॉलिटिशियन होंगे ना, और कौन होगा। एक और कॉल है 81 एम खान। एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। आरफा भाई मैं बात कर रही हूँ राणा।
जी राणा
ब्रैम्पटन से।
जी राणा
बहुत बहुत आपकी आवाज़ सुन के खुशी हुई है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं अभी इस वक्त कुरान शरीफ पढ़ रही थी, लेकिन ये जो करामतुल्ला गौरी साहब आते हैं इनका बस मैं बता नहीं सकती कि कितना, यानी मैं कुछ हर मुश्किल हर चीज छोड़ के मैं उनका सुनती हूँ, क्योंकि वो बहुत हक बात कहते हैं। और ये आप ही की ये आपकी मोहब्बत और हक के साथ जो आप जुड़ी हुई हैं उसकी वजह से है, क्या कहते हैं, ये चल रहे हैं बेचारे, और हम सब उन्हें सुनना चाहते हैं। हमारी पूरी फैमिली यहाँ 40 साल से ज्यादा हो गए, क्योंकि वो हक के हैं।
सही।
तो आप जरूर कह गए, और आपको लंबी उम्र दे, और आप वाकई बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा।
बहुत शुक्रिया मिस्टर खान, थैंक यू वेरी मच. जीशान प्लीज कॉल स्टूडियो 416-620-1778 416-620-1780 प्लीज कॉल इन द स्टूडियो 416-620-1778 वहां कॉल कर लीजिएगा. एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब मैं ईमानदारी से अपनी पोजीशन को देखूं, यस आई एम हियर टू डिफेंड फ्यू थिंग्स, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, किसी की रिलीजन जात बरादरी के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, पर्सनल टॉन्ट नहीं होनी चाहिए. ये एक चीज है जो मुझे लीगली फुलफिल करना पड़ती है, नंबर वन. नंबर टू, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज के साथ जो लोग हैं, आई रिप्रेजेंट एवरीबॉडी और अगर मैं कहती हूं तो मैं सारे पॉलिटिशियंस को और अपने आप को और आपको भी बीच में इन्वॉल्व करती हूं. 8100 सारी की सारी कॉल्स हैं और वो प्रदीप जी भी बैठे हुए हैं, मगर यस वी आई टेक योर आई गिव यू अ प्लेटफॉर्म. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम
जी. बस मुझे इतना ही कहना था कि हर एक को अपनी ओपिनियन देने का हक है, किसी को भी किसी की ना इंसल्ट करनी चाहिए ना डिसरिस्पेक्ट होना चाहिए बिहेवियर. और मेरा ख्याल है कि जो भी कोई बात कर रहा है वो कर तो पाकिस्तान के लिए रहा है, इसलिए ये कोई अच्छा रवैया नहीं है कि आप फोन पे आगे, क्योंकि आपको कोई देख भी नहीं रहा, आपको बस लोग सुन रहे हैं. और वो काफी एजिड आदमी है, मैं उनको अच्छे से सुन रहा हूँ और वो अच्छी बातें ही करते हैं गौरी साहब. मेरा नहीं ख्याल किसी को भी कोई हक है किसी की भी बेइज्जती करने का.
बहुत तो सही कहा आपने,
बस इतनी समझ रही.
बहुत सही, 8100 आपने बहुत 289 से आपका नंबर जो, थैंक यू वेरी मच. अगली कॉल. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो जी जी, आपका नाम बताइए और बात कीजिए.
जी बाल नाम है मेरा
जी.
असल में सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद अभी नहीं बात की गई, लेकिन वो हो सकता है कि अब होना शुरू हो जाए और हो भी रही है कि हमारी तरफ से बिलावल जो है जरदारी वो जाएगा दुनिया भर में पाकिस्तान का जो अपना नुक्ते नजर पेश करने के लिए, और इंडिया से शशि थरूर. ठीक है, तो इस सिलसिले में के अंदर अब ये था कि कुछ मतलब मैंने एक वो रऊफ क्लासरा का एक वो मैं देख रहा था व्लॉग, कुछ तो उनको डाउट भी था कुछ है भी. एनीवे मैंने इसको कंपैरिजन के लिए शशि थरूर का और जो हमारे बिलावल साहब है इनका एक वो मैंने एनालिसिस मांगा चैट जीपीटी से. चैट जीपीटी ने दोनों का एनालिसिस किया और उसके बाद उसने थोड़ा सा एज दिया, कुछ ज्यादा एज दिया इसको शशि थरूर को. मैंने आपको बताई तो इंटरेक्टिव है अब चैट जीपीटी, मैंने उसके अंदर अपना फिर अपने वो कमेंट्स लिख के उसके अंदर जो तकरीबन 15-20 लाइनें थी उसको मतलब चैट जीपीटी में डाल दिया. मुझे चैट जीपीटी से जवाब आया कि मतलब उसने एनालिसिस किया, उसने कहा ये तुमने बिल्कुल एक नई एक वो मतलब जो है ना रोशनी डाली है और मेरा ख्याल है कि तुम सही हो. मेरा सिर्फ एक शॉर्ट पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का ये था कि उसको शशि थरूर तकरीबन 70 साल का है, जितनी एज बिलावल की है इतनी एज के अंदर शशि थरूर थरूर ने कोई भी सक्सेस हासिल नहीं की थी, जबकि उसके मुकाबले में ये उससे ज्यादा वो हासिल कर चुका है. ठीक है ना, बहरहाल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर. तो बहरहाल मैंने उसका जो एनालिसिस उसने मुझे जो दिया वो मैंने उनको भी भेजा, रऊफ क्लासरा को भी. ठीक है, कि वो चैट जीपीटी ने मुझे क्या रिस्पांस दिया और मैंने क्या कहा था. अब मैं सिर्फ अगर ये चाहता हूँ कि मैं आपको भी उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, इसलिए कि एक एनालिसिस जब आप कर रही हैं करने का आइंदा चंद दिनों में, खासतौर पर ये गोरी साहब को मिले तो वो जरा अपने आप को काबू में रखें, वो बिलावल को जो है वो ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें.
आपका पैगाम एयर पे चला गया भाई,
और मैं आपको वो मैसेज वो बिल्कुल कॉपी कर दूंगा, बिल्कुल उसका लिंक भेजूंगा मैं आपको, चैट जीपीटी का लिंक, आप खुद भी उसको क्लिक करके वो पूरा पढ़ सकती हैं. ये सिर्फ जो है ना प्रोपेगेंडे की जो वॉर है ना, इसके अंदर जो अपना जी चाहे मुंह खोल ले, लेकिन आज के दौर में सिर्फ गोरी साहब ही नहीं, गोरी साहब की जो शायरी थी ना, ऐसी शायरी तो आप चैट जीपीटी तो क्या किसी भी जो है ना एआई को दे दें, इससे अच्छी शायरी लिख के दे देगा. बाबा खुदा मैं यकीन से कह रहा हूँ
आपका पैगाम एयर पे चला गया बिल्कुल, मैंने कोई कुछ नहीं कहा,
बस आइंदा वो चैट जीपीटी से लिखवा लिया करे. मैंने तो अरबी ट्रांसलेट की है, ये जो बहुत सारी जो उर्दू की गजलें हैं ना वो अरबी में भी ट्रांसलेट कर ली और बड़ी अच्छी करती हैं, वो मैंने अरबियों से भी वो करी है कंसल्टेशन, तो वो भी कर लिया करे आने से पहले, तो जरा उनकी जो शायरी का जो वो
बेरागरक करते हैं वो ना हो सके।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी को डिफेंड नहीं करती मगर मैं इतना जरूर कहती हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी भी हैं और यस, एक तरफ झुकाव होना वो एक अलग बात है। आप तमाम मुख्तलिफ लोगों की पार्टी है, मैंने बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ कि आप में से हर इंसान आके अपनी मर्क, हाँ सिर्फ किसी मजहब या किसी एक शख्स की जात को नेगेटिव बात ना की जाए, बिकॉज एज कनेडियन वी ऑल हैव टू लिव टुगेदर। मेरे साथ हैं आप, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
बाजी, क्या हाल चाल है, खैरियत है?
अल्लाह का शुक्र है। हाशमी साहब आप क्विक बात कर लें, क्योंकि फिर ये न हो कि वो प्रदीप जी मुझे फायर कर दें, वो फायर भी बड़े आराम से कर देते हैं।
नहीं नहीं, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा जो कुछ भी इसमें कहा गया, इस वक्त मैं सब कुछ सुन रहा था। बस आप उन लोगों को देखें जिनके पास वतन नहीं है, तो सब समझ में आ
गया। बस बात बहुत खत्म। आपने मेरा ख्याल है दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आप देखिए उन ममालिक को जिनके पास अपना वतन नहीं है,
वतन नहीं है, उनको देख लें और आराम से बैठे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम गजा को देखिए आज, आप प्रैक्टिकली गूज बम्स आए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने गजा का नाम लिया। सीरिया की बात